एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो शायद इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल पहेली है।
अनंत।
हाँ, इन्फिनिटी।
मतलब एक ऐसा आइडिया जो कवियों को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को,
सबको सदियों से उलझाता आया है।
बिल्कुल। और इस उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेंगी गणितज्ञ इयन स्टीवर्ट की किताब इन्फिनिटी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और इयन स्टीवर्ट इस विषय के लिए मतलब एकदम सही इंसान है। वो सिर्फ एक महान गणितज्ञ नहीं है बल्कि एक कमाल के कहानीकार भी है।
सही कहा। वो मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी बहुत मजेदार कहानियों से समझा देते हैं।
हाँ, तो आज का हमारा मिशन है अनंत के इस कह सकते हैं विशाल और डरावने आइडिया को थोड़ा करीब से समझना।
और ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, है ना? हमारी आज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को समझने के लिए भी ये आइडिया बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये विचार एक डरावने विरोधाभास से गणित का सबसे शक्तिशाली टूल बन गया।
तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अनंत कोई एक अकेली चीज नहीं है। गणितज्ञ दो तरह के अनंत की बात करते हैं।
दो तरह के?
हाँ, पहला है संभावित अनंत या पोटेंशियल इन्फिनिटी। ये तो काफी आसान है, जैसे गिनती
1, 2, 3।
हाँ, आप गिनना शुरू करें, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप हमेशा एक और नंबर जोड़ सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो बस चलता रहता है।
ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन असली मुश्किल तो दूसरे वाले से शुरू होती होगी।
बिल्कुल, जिसे कहते हैं वास्तविक अनंत यानी एक्चुअल इन्फिनिटी। मतलब सभी नंबरों का पूरा सेट, एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ठोस चीज की तरह।
जैसे सारे पूर्णांकों को एक बक्से में बंद कर दिया हो।
ठीक वैसे ही। और इसी आइडिया ने प्राचीन यूनानियों को बहुत डरा दिया था। उन्हें लगता था कि ये तो तर्क के ही खिलाफ है, एक तरह का पागलपन है।
और इस डर की कोई खास वजह थी?
हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह थे ज़ेनो जैसे दार्शनिक। उनकी एक कहानी बहुत मशहूर है, अखिलीज और कछुए वाली।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
तो मान लीजिए अखिलीज दुनिया का सबसे तेज धावक है और वो एक कछुए से रेस लगा रहा है जिसे थोड़ी सी बढ़त दी गई है।
ठीक है।
अब तर्क ये है कि अखिलीज को कछुए तक पहुंचने के लिए पहले उस जगह पहुंचना होगा जहां से कछुए ने शुरू किया था।
यहां तक तो ठीक है,
लेकिन जब तक अखिलीज वहां पहुंचता है कछुआ थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होता है।
अच्छा।
अब अखिलीज को उस नई जगह पहुंचना है, पर जब तक वो वहां पहुंचता है कछुआ फिर थोड़ा आगे खिसक जाता है।
और ये प्रक्रिया
कभी खत्म नहीं होती। ज़ेनो का कहना था कि अखिलीज कभी भी कछुए को पकड़ ही नहीं पाएगा।
सिद्धांत में हाँ,
क्योंकि उसे हमेशा अनंत छोटे छोटे फासले तय करने होंगे।
एक मिनट, लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं है। जाहिर है कि तेज धावक कछुए को पकड़ लेगा, तो फिर इस पहेली का मतलब क्या हुआ?
यही तो बात है। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने दिखाया कि अनंत के बारे में सोचना कितना खतरनाक हो सकता है।
और इस एक पहेली ने गणितज्ञों के मन में इतना खौफ पैदा कर दिया कि लगभग 2000 साल तक
किसी ने पूर्ण अनंत को गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं की। उसे गणित से बाहर ही रखा गया।
तो फिर इस डर को तोड़ा किसने? जरूर किसी ने तो कोई तरीका निकाला होगा।
हाँ, एक रास्ता निकाला गया, पर वो एक तरह का जुगाड़ था। 17वीं सदी में न्यूटन और लीबनिज़ आए
कैलकुलस के साथ।
बिल्कुल, उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया जो ग्रहों की चाल से लेकर गिरती चीजों की रफ्तार तक हर चीज के लिए जरूरी था। उन्होंने अनंत रूप से छोटी और बड़ी चीजों के साथ काम करने का एक तरीका बना लिया।
तो उन्होंने अनंत की पहेली सुलझा ली?
नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने पहेली को सुलझाया नहीं, वो बस उसके बगल से निकल गए।
मतलब
उन्होंने अनंत को एक वास्तविक चीज की तरह नहीं बल्कि एक उपयोगी कल्पना, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि इससे सही जवाब मिलते हैं, पर वो भी इसके गहरे दार्शनिक सवालों से बचते रहे।
तो अनंत एक मेहमान जैसा था, घर का सदस्य नहीं।
बहुत अच्छा कहा। तो सदियों तक यही चलता रहा, अनंत को इस्तेमाल करो पर ज्यादा सवाल मत पूछो।
फिर कहानी में असली हीरो की एंट्री कब हुई? वो कौन था जिसने सीधे अनंत से आंख मिलाने की हिम्मत की?
वो थे 19वीं शती के जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस समय के सभी गणितज्ञ असंभव मानते थे।
उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अनंत के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं अनंत सेटों के आकार की तुलना करूंगा।
लेकिन अनंत चीजों के दो सेटों की तुलना कोई कैसे कर सकता है? आप उन्हें गिन तो सकते नहीं।
यही तो कैंटर का कमाल था। उन्होंने कहा, गिनने की कोशिश ही मत करो, बस जोड़ी बनाओ।
जोड़ी बनाओ?
हाँ, सोचे एक डांस पार्टी में हर लड़के के लिए एक लड़की है, एक भी कम या ज्यादा नहीं, तो आपको उन्हें गिनने की जरूरत नहीं ये जानने के लिए कि दोनों की संख्या बराबर है।
सही बात है।
कैंटर ने इसी सरल से विचार को अनंत पर लागू किया। इसे एक से एक पत्राचार कहते हैं।
इसको समझने के लिए कोई आसान उदाहरण है?
हाँ, और वो उदाहरण कमाल का है, हिल्बर्ट का होटल।
अच्छा, हिल्बर्ट का होटल।
हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसा होटल जिसमें अनंत कमरे हैं। कमरा वन, कमरा टू और ये सिलसिला बस चलता रहता है। और मान लीजिए कि होटल पूरा खचाखच भरा है।
ठीक है, अनंत कमरों वाला एक भरा हुआ होटल। फिर
अब एक नया मेहमान आता है। मैनेजर जो कहता है, कोई बात नहीं, वो अनाउंसमेंट करता है कि सभी मेहमान अपने से अगले नंबर वाले कमरे में चले जाएं।
कमरा एक वाला दो में, दो वाला तीन में।
बिल्कुल। और अचानक कमरा नंबर एक खाली हो जाता है और नए मेहमान को जगह मिल जाती है।
रुकिए, ये तो बहुत अजीब है। अगर होटल पूरा भरा है तो भरा है, ये कैसे हो सकता?
इसका बहुत गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि अनंत के नियम हमारी रोजमर्रा की सहज बुद्धि से बिल्कुल अलग है।
और कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? मैंने सुना है कि अगर अनंत मेहमानों की बस आ जाए तब भी जगह बन सकती है।
बिल्कुल, मैनेजर बस हर पुराने मेहमान को अपने कमरा नंबर को दोगुना करने के लिए कहता है।
तो एक वाला दो में, दो वाला चार में, तीन वाला छह में।
हाँ, इस तरह सारे सम संख्या वाले कमरे भर जाएंगे और अनंत विषम संख्या वाले कमरे खाली हो जाएंगे।
वाह, ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। तो कैंटर ने साबित कर दिया कि हम अनंत सेटों की तुलना कर सकते हैं। तो क्या सभी अनंत सेट एक ही आकार के होते हैं?
यही वो सवाल था जिसका जवाब देकर कैंटर ने गणित की दुनिया में भूचाल ला दिया। सब यही मानते थे कि अनंत तो बस अनंत होता है।
लेकिन
कैंटर ने अपने प्रसिद्ध विकर्ण तर्क से यह साबित किया कि नहीं, अनंत के भी अलग अलग आकार होते हैं।
क्या एक अनंत दूसरे अनंत से बड़ा हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है?
उन्होंने दिखाया कि जो पूर्णांकों का अनंत है, मतलब एक, दो, तीन जैसी संख्याएं, वो वास्तविक संख्याओं यानी दशमलव वाली सभी संख्याओं के अनंत से छोटा है।
आप उन दोनों की जोड़ी नहीं बना सकते?
नहीं बना सकते, वास्तविक संख्याएं हमेशा बच जाएंगी। ये एक बिजली के झटके जैसा था। इसने बताया कि अनंत कोई एक मंजिल नहीं बल्कि एक पूरा नया ब्रह्मांड है।
और उन्होंने हमें ट्रांसफिनाइट नंबर दिए, अनंत के पार की संख्याएं।
बिल्कुल।
तो इस एक खोज ने तो गणित की दुनिया ही बदल दी होगी। सबने उन्हें जीनियस मान लिया होगा।
बिल्कुल नहीं, शुरुआत में तो उन्हें पागल समझा गया। उनके काम को इतना क्रांतिकारी माना गया कि कई बड़े गणितज्ञों ने उनका मजाक उड़ाया।
ये तो दुख की बात है।
हाँ, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनका काम इतना ठोस था कि धीरे धीरे गणित को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। पर इस क्रांति के साथ एक संकट भी आया।
कैसा संकट?
जब आप इतने बड़े आइडियाज के साथ खेलते हैं तो कुछ अनअपेक्षित समस्याएं भी आती हैं। बर्ट्रेंड रसेल जैसे दार्शनिकों ने सेट थ्योरी में कुछ विरोधाभास खोज निकाले।
रसेल का विरोधाभास? वो थोड़ा उलझा हुआ है ना?
हाँ, वो कुछ ऐसा है कि एक ऐसे सेट की कल्पना करो जिसमें वो सभी सेट शामिल हैं जो खुद को सदस्य के रूप में नहीं रखते हैं।
और सवाल ये है कि क्या ये सेट खुद को रखता है?
हाँ, अगर जवाब हाँ है तो परिभाषा के हिसाब से इसे खुद को नहीं रखना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो इसे खुद को रखना चाहिए।
ये तो एक तार्किक भूलभुलैया है।
बिल्कुल, इसने गणित की नींव हिला दी। इसने दिखाया कि आपको नियम और सख्त करने होंगे।
तो इस संकट का नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये हुआ कि गणित और भी ज्यादा कठोर और औपचारिक बन गया। और फिर आए कर्ट गोडेल
अपने अपूर्णता प्रमेय के साथ।
हाँ, और उन्होंने कुछ ऐसा साबित किया जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, कि किसी भी तार्किक प्रणाली में हमेशा ऐसे सच्चे बयान होंगे जिन्हें आप उस प्रणाली के अंदर से साबित ही नहीं कर सकते हैं।
एक तरह से ये गणित की अपनी सीमाओं को स्वीकार करना था।
बिल्कुल, गोडेल ने दिखा दिया कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गणित खुद कभी नहीं दे सकता।
अच्छा, ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये सब गणित की दुनिया की बातें हैं। क्या इस अनंत का असल दुनिया में कोई वजूद है?
ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है।
कैसे?
यहाँ पर फ्रैक्टल्स की अवधारणा सामने आती है। फ्रैक्टल्स ऐसे आकार होते हैं जिन्हें आप कितना भी जूम करें वो एक जैसे ही दिखते हैं।
जैसे कोच स्नोफ्लेक।
हाँ, आप उसे कागज पर बना सकते हैं, उसका क्षेत्रफल सीमित होता है, लेकिन उसकी बाउंड्री, उसकी परिधि की लंबाई अनंत होती है।
मतलब एक सीमित जगह में अनंत जटिलता।
बिल्कुल।
और ब्रह्मांड के बारे में क्या? क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत है?
ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है, हम नहीं जानते। लेकिन भौतिकी में अनंत एक और जगह आता है जहां वो एक समस्या बन जाता है।
ब्लैक होल के केंद्र में
सिंगुलैरिटी आ है।
तो यहाँ गणित और भौतिकी में एक तरह का तनाव है।
हाँ, जहाँ गणित ने अनंत का एक सुंदर स्वर्ग बना लिया है, वहीं भौतिकी उसे एक चेतावनी संकेत के रूप में देखती है। यह हमें याद दिलाता है कि एक गणितीय सत्य जरूरी नहीं कि एक भौतिक सत्य भी हो।
इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए पहली बड़ी बात यह है कि कैसे एक विचार अनंत, जो पहले इतना डरावना माना जाता था, वही आगे चलकर आधुनिक गणित की सबसे बड़ी ताकत बन गया।
ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी सबसे मुश्किल पहेलियां ही सबसे बड़े दरवाजे खोलती हैं।
और दूसरी बात ये कि अनंत के मामले में हमारा कॉमन सेंस काम नहीं करता। भारत में हम अनंत शब्द का इस्तेमाल आध्यात्मिक रूप से करते हैं, लेकिन गणित हमें एक भाषा देता है जिससे हम इसके बारे में ठीक ठीक सोच सकते हैं।
भले ही नतीजे कितने भी अजीब क्यों न लगें, ये अमूर्त तर्क की जीत है।
और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया तो यही है कि अनंत एक नहीं बल्कि अनेक हैं। कुछ अनंत दूसरों से बड़े हैं।
ये हमारी सोच के दायरे को ही बदल देता है। ये जानने जैसा है कि कुछ चीजें सिर्फ बहुत बड़ी नहीं है बल्कि वे एक अलग ही किस्म की बड़ी हैं।
सही कहा। और आखिर में ये हमें बौद्धिक विनम्रता भी सिखाता है।
हाँ, ये स्वीकार करना कि हमारी सहज समझ की सीमाएं हैं हमें ज्यादा जिज्ञासु बनाता है। ये सिखाता है कि जो असंभव लगता है वो सही नजरिए से संभव हो सकता है।
और सुनने में ये सब भले ही बहुत सैद्धांतिक लगे, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर भी है। कैलकुलस के बिना आज की इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
बिल्कुल। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो असली जैसे पहाड़ नदियां दिखते हैं, वो फ्रैक्टल्स के गणित का ही कमाल है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर जीपीएस तक कहीं ना कहीं इन अमूर्त विचारों की ही देन है।
तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि मानव मन कितना अद्भुत है। हम सीमित प्राणी हैं, फिर भी हमने गणित जैसी भाषा का आविष्कार किया है जिससे हम असीम के बारे में तार्किक रूप से बात कर सकते हैं।
ये हमारी कल्पना की सबसे बड़ी छलांग है।
और आपके लिए?
मेरे लिए सबसे यादगार बात जॉर्ज कैंटर की खोजें हैं। ये विचार कि अनंत को गिना जा सकता है, कि अनंत एक विलक्षण शब्द नहीं बल्कि बहुवचन है, अनंतों का एक पूरा परिवार।
ये हमारी सोच की सीमाओं को बहुत फैला देता है।
हाँ, ये बताता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, सुंदर और विशाल हो सकती है।
और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अगर गणित हमें ये साबित करके दिखा सकता है कि अनंत के कई स्तर होते हैं जो हमारी सहज समझ से परे हैं, तो क्या वास्तविकता के अन्य पहलू भी हो सकते हैं, जैसे चेतना या खुद ये ब्रह्मांड जो हमारी मौजूदा समझ से कहीं ज्यादा जटिल और बहुस्तरीय हों?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।